अष्टपाहुड लेक्चर नंबर 1-8 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् काऊणनमुक्कारम् जिनवरवसहस्सवड्डमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहा कम्मं समासेन। यह कुंदकुंदाचार्य भगवान का जो अष्टपाहुड़ है, उस अष्टपाहुड़ को जो गुरुदेव ने समझाया है, उसमें से हम दर्शन पाहुड़ की 11वां नंबर की जो गाथा है और हम पृष्ठ क्रमांक 118 इस पर आए हैं। यहाँ जो बीच में पैराग्राफ नया चालू होता है, देखो यहाँ कैसी बात कह रहे हैं कि मुनि का चारित्र कैसा होता है। ऐसा जब प्रश्न आता है तो लोगों की नज़र उनके बाह्य चारित्र पे जाती है, लेकिन यहाँ क्या बात बता रहे हैं उसको भी देखेंगे, वो भी बताएंगे। वो जिसको आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से अराग दशा प्रकट हो उसको तीव्र राग नहीं होता। यानी क्या, आत्मा के स्वभाव के अवलंबन लिया है यानी उनको वीतरागता हुई है तो उनके तीव्र राग यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होता। इस कारण वस्त्र पात्र आदि बाह्य निमित्त नहीं होते। यदि तीव्र राग हो तो बाह्य निमित्त के साथ संबंध करता है, परंतु तीव्र राग नहीं हो तो वस्त्र पात्र रूप निमित्त के साथ संबंध नहीं होता। राग का सर्वथा अभाव हो तब वीतराग हो जाए। यहाँ चारित्र की बात है। आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी आनंद शक्ति का भंडार है, ऐसी प्रतीति होने के बाद बहुत राग घट गया है, इस कारण मुनि को तीव्र राग नहीं होता, वस्त्र पात्र नहीं होते। जिसके वस्त्र पात्र नहीं छूटे उसके तीव्र राग नहीं छूटता, अर्थात वह तीव्र चारित्रवान अथवा मुनि नहीं है। फिर भी उसे मुनि मानना पाप दृष्टि है। सदोषपना आत्मा की पर्याय में है, पर में नहीं तथा अंतर स्वभाव में नहीं। यदि पर्याय में सदोषता न हो तो प्रकट आनंद होना चाहिए, और अंतर स्वभाव में आनंद होना न हो तो आनंद शक्ति प्रकट नहीं होगी। वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है और शक्ति में शुद्धता भरी है। जिसको ऐसी प्रतीति हुई है उसको सम्यक दर्शन हुआ है। तदुपरांत जिसको स्वभाव के अवलंबन से सदोषता बहुत घट गई है उसको वस्त्र पात्र नहीं होते। देखो यहाँ पर ये बात बार बार बता रहे हैं कि यह जीव सम्यक दृष्टि होगा तो ही आगे उसमें अधिक स्थिरता होगी और बाह्य में वस्त्र पात्र आदि छूट जाएंगे। ख्याल में है? क्या लिखते, देखो नीचे से तीसरे लाइन में, तद उपरांत यानी कभी के जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, तद उपरांत जिसको स्वभाव के अवलंबन से यानी उसने अपने स्वरूप में एकाग्रता की तो क्या हुआ, सदोषता बहुत गढ़ गई। सदोषता यानी राग जिनका गढ़ गया, एक चौकड़ी दो चौकड़ी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है तो ऐसी अवस्था में उसके वस्त्र पात्र नहीं होते। जिसके बाह्य में वस्त्र पात्र हो उसे मुनि मानना साधक मानना विपरीत दृष्टि है। विपरीत दृष्टि का अर्थ क्या है प्रतिपदे? विपरीत दृष्टि है का अर्थ क्या? हाँ, विपरीत दृष्टि यानी जैसे जिनेंद्र भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है उससे उन्धी मान्यता है? क्या कहते हैं, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है और शक्ति में शुद्धता भरी है, यानी क्या, मेरा स्वभाव तो परिपूर्ण है, पर्याय में अभी क्या है, अल्पज्ञता है, पर्याय में अशुद्धता है,
राग है ना, अभी
राग है
और स्वभाव वीतरागी है, पूर्ण शुद्ध है, तो पर्याय का भी ज्ञान करेगा कि नहीं करेगा? पर्याय में भी शुद्ध मानेगा तो निश्चयभाषी हो जाएगा, वो तो उसका मिथ्यात्व नहीं गया है, तो जैसा है वैसा स्वीकार करता है उसके समय तो होता है। यानी पर्याय का भी भान है, वर्तमान पर्याय का, और शक्ति कैसी है उसका भी भान है, तो उसके समय तो होता है।
देखो दो बातें हैं, पहले में पहले मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, केवल ही भगवान जैसा हूँ, सिद्ध जैसा हूँ, स्वभाव से ऐसा मैं भरितावस्थ हूँ, ख्याल में आया? लेकिन ये तो सब ठीक है, पर्याय में मेरे वो अभी है नहीं, ये भी ज्ञान होगा तो पर्याय में वह अवस्था प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील होगा। यानी यहाँ तो कह रहे हैं त्रिकाली स्वभाव का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ में पर्याय में जो हीनता है, अधुराश है, उसका भी ख्याल रहे तो ही उसमें परिपूर्णता लाने की बात होगी। जैसे हम स्कूल में, ये लड़का तो बहुत मार्क ले रहा है और मेरे इतने कम है, ऐसा जब उसको अंदर से फील होगा तो अधिक मार्क प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करेगा, प्रयत्नशील रहेगा। वैसे यहाँ कह रहे हैं, यहाँ तो दूसरे की तरफ देखने का ही नहीं है, स्वभाव मेरा परिपूर्ण है, पर्याय में अभी कमपना है। चलो चलो, बात ख्याल में आई बहन? अब विपरीत दृष्टि यानी विपरीत मान्यता लेना, दृष्टि का अर्थ हमारे पर की सेवा करने की बात कब आएगी? शरीर में रोग आवे वह तो जड़ की अवस्था है, पर की सेवा करना चाहता है तो तेरे घर में व्यक्ति बीमार पड़े तो उनकी सेवा करके ठीक कर देना। भाई प्रत्येक पदार्थ कायम रहकर बदलता है, ये कौन सा गुण बताता है? हाँ नलिन भाई, बहुत अच्छा, उत्पाद वे ध्रुवत्व बताता है कि पदार्थ कायम है लेकिन वो कैसा है, कायम यानी निरंतर बदलता है, पर के कारण पलटना मानना तो अधर्म भाव है,
अधर्म हुआ।
अरे डॉक्टर अपने पिता को नहीं बचा सकता, उनकी सेवा करने का राग करता है परंतु उनकी अवस्था को बदल नहीं सकता, कोई पर की अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा हम कहते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो वही होता है। वो मानते हैं कि मंजूरे खुदा होता है और हम मानते हैं कि जो होना है सो होता है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा लानस का परिवर्तन का अभिमान के। देखो अपने यहाँ भी जो कोई पूजन है ना, बहुत सारी ऐसी एक से एक बढ़कर है, उस वो पूजा हम करते हैं तो हमारे अंतर में ऐसा लगता है कि देखो मेरी मान्यता कैसी है। अभी जैसा पूजन खत्म होएगा मुझे फला को फोन करना है, मुझे पले उधर जाना है, कैसा है, कोई पर की अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता, अवस्था अवस्था के कारण होने वाली चीज है, वो अवस्था गुण के कारण क्या या द्रव्य के कारण होवे ऐसा भी नहीं है, कह रहे हैं अवस्था अवस्था के कारण होने वाली चीज है, वह अन्य से नहीं होती। क्या बात है, अन्य पदार्थ निमित्त भले हो परंतु अवस्था पर से नहीं होती, मैं पर की क्रिया नहीं कर सकता। देखो ये तो पर की बात हुई, राग मेरे स्वभाव का साधन नहीं है, यानी राग करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसी दृष्टि होने पर, ऐसी मान्यता होने पर मुनिपने की प्रतीति वर्तती है, राग आने पर भी राग से मेरा ज्ञान भिन्न है। क्या कहा? पर की क्रिया मुझसे नहीं होती, राग से मुझे लाभ नहीं होता, मेरा स्वभाव अपूर्ण नहीं है, पुण्य पाप रूप कैसे भी भाव हो वे राग है विकार है। आगे का पढ़ू के नको? अधर्म है, ऊपर अर्धम है इधर अधर्म है, वे मेरे स्वभाव को सहायक नहीं है, ऐसी प्रतीति वाला मुनि होता है। इसका अर्थ क्या? ऐसी प्रतीति जिनके नहीं है, बाह्य में मुनि अवस्था ली है, वे द्रविलिंगी मुनि है। अगर उनके 28 मूलगुण यथोचित पले जाते हैं तो क्या कहा? देखो, राग आने पर भी राग से मेरा ज्ञान भिन्न है, तो मैं ही राग का करता हूँ ऐसा वो मानते हैं। पर की क्रिया मुझसे नहीं होती, ये मानते हैं कि पर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, यानी या तो पर मेरी क्रिया करता है, कर्म के कारण मेरे ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। राग से मुझे लाभ होता है और मेरा स्वभाव अपूर्ण है ऐसा मानता होगा शायद, क्या मालूम। पुण्य पाप रूप कैसे भी भाव हो वे राग है, ये यानी ये ऐसी बात उस जीव के नहीं है, इसलिए उसको अभी भाव लिंगीपना प्राप्त नहीं हुआ है। उनको वस्त्र पात्र नहीं होते, जो वस्त्र पात्र सहित मुनिपना मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, सब में व्यापक एक आत्मा माने उसकी बात नहीं है। जैसे प्रत्येक छोटी पीपर में चौसठ पहरी चरपराहट की ताकत है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञ होने की ताकत है। संसार में विकार है और विकार में कर्म निमित्त है, ऐसी जिसे यथार्थ प्रतीति है उसे मुनि की यथार्थ प्रतीति है। मुनि नग्न होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आत्मा के पूर्ण ज्ञान और आनंद प्रकट करने का निकट साधन चारित्र है। वह चारित्र कैसा है? निर्दोष दृष्टि पूर्वक निर्ग्रंथ दशा रूप है। ये जो पहले प्रश्न पूछा ना चारित्र क्या है, उसकी बात अभी शुरू कर दी। क्या कहा? निर्दोष दृष्टि पूर्वक निर्ग्रंथ दशा जो है वह रूप चारित्र है, केवल ज्ञान का नजदीकी कारण है। वह आत्मदर्शन की उग्र दशा अर्थात अरागी मोक्ष मार्ग है, यही जैन दर्शन है। कैसे है मुनि? 46 दोष टालकर आहार लेते हैं, वस्त्र पात्र रखने वाला मुनि नहीं है, सर्वज्ञ दशा प्रकट करने की तैयारी वाले मुनि के राग अत्यंत अल्प होता है, वे खड़े खड़े आहार लेते हैं, उनको किसी समय उपदेश का विकल्प आता है, वहाँ उन्हें ऐसा भेदक ज्ञान वर्तता है कि वाणी तो वाणी के कारण से है और विकल्प अपनी कमजोरी के कारण है। ऐसे मुनि 46 दोष रहित आहार लेते हैं, अपने लिए बनाया हुआ भोजन ले वे मुनि नहीं है। देखो यहाँ बार बार ये जो लिखते हैं ना, दो बातें, वस्त्र पात्र की बात हमेशा आती है और खड़े खड़े आहार लेते हैं, इसका अर्थ मुझे ऐसा लगता है, मुझे मालूम नहीं आपसे पूछूंगा मैं, कि श्वेतांबर साधु बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात बार बार स्वामी जी रिपीट कर रहे हैं, वस्त्र पात्र को कभी चांस छोड़ते ही नहीं, और दूसरी बात खड़े खड़े आहार लेना, और तीसरी बात
कर लाते हैं ना और बैठकर खाते होगे ना।
नहीं वो मालूम नहीं ना, हमने खाते वक्त कभी देखा नहीं उनको, मांगने के लिए घर घर जाते हैं। लेकिन इतना तो है कि अपने उद्देश्य से नहीं बनाया हो ऐसे भोजनालय में भी जाके लेते हैं, उनके लिए थोड़ी बना, हमारे लिए तुम्हारे लिए, जो हम पैसा लेके टिकट लेके खाते हैं तो उनके लिए थोड़ी बनाया, वहां जाते हैं अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं। वहां मुनि को कितनी लीनता होती है, कितनी मलिनता बाकी है, जिसे इसका ज्ञान नहीं है उसे संवर निर्जरा आश्रो बंध का ज्ञान नहीं है, तथा निर्जरा का कार्य मोक्ष है उसका भी ज्ञान नहीं है। निर्ग्रंथ अर्थात ग्रंथ यानी परिग्रह नहीं, ममत्व रहित आत्मा, पूर्ण चिदानंद आत्मा की प्रतीति वाले मुनि को, प्रतीति वाले को मुनि की प्रतीति है। मुनि को निर्दोष आहार लेने की वृत्ति उठती है, उनके वस्त्र नहीं होते, दोषित यानी कैसा उद्दिष्ट आहार नहीं होता, इस बात के परिज्ञान बिना मुनि को अजीव का संयोग कैसा होता है उसकी खबर नहीं है। अर्थात उसे अजीव की भी खबर नहीं है, मुनि दशा में कितना राग घटना चाहिए और कितना राग रहना चाहिए इसका जिसे पता नहीं है, उसे न तो आश्रव बंध का पता है और न संवर निर्जरा मोक्ष का भान है। अर्थात उसको नव तत्वों का ही भान नहीं है। मुनि तो सर्वज्ञ पद की तैयारी करने वाले होते हैं, इसकी उसे खबर नहीं है। जिन्हें उद्दिष्ट आहार लेने का विकल्प उठता हो उन्हें मुनि मानने वालों को मुनि मार्ग की विपरीत दृष्टि है, तथा मुनि दशा का पूर्ण कार्य मोक्ष की विपरीत दृष्टि है। यहाँ विशेष साधक अथवा उग्र साधक की बात है, यद्यपि वह अरागी दशा का उग्र साधन करता है तथापि अपनी कमजोरी से अल्पराग द्वेष होते हैं, यदि स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जावे तो केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ हाँ मैं अच्छा देखो ऐसा है, उसके ऊपर की दो लाइन पढ़ता हूँ, उनके वस्त्र नहीं होते, मिल गया, दूषित यानी उद्दिष्ट आहार नहीं होता, इस बात के परिज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान बिना मुनि को अजीव का संयोग कैसा होता है उसकी खबर नहीं है। यानी जो मुनिराज होते हैं, अभी जो सच्चे भावलिंगी संत होंगे, वे क्या करते हैं, ऐसे जिसको हम आकड़ी कहते हैं यानी विशिष्ट ऐसी बात मन में धारण करते हुए निकलते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो ही मैं आहार लूंगा। अब उनके संयोग में जो आहार रूपी जो अजीव पदार्थ है उनका होना होगा तो वो होगा और नहीं होगा तो नहीं भी होगा, इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कहा, इस बात
होगा
का
तो वो उद्दिष्ट वाला नहीं होगा।
हाँ,
और वो वस्त्र पात्र आदि रूप भी संयोग नहीं होगा अजीव का, ये बात कहना चाहते हैं।
यानी इस बात के परिज्ञान बिना मुनि को अजीव का संयोग कैसा होता है उसकी भी खबर नहीं है, यानी संयोग में क्या है और क्या नहीं है। मैंने तो एक उदाहरण के लिए वो बताया था कि भाई आंकड़ी ले निकलते हैं, हमने देखा ना शास्त्रों में कई कई ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे उदाहरण देखे कि हम सोचे तो कभी हमको जिंदगी में खाना नहीं मिले। अब मिट्टी के बर्तन में वो भी राजकुमार के द्वारा बनाए गए, ऐसे भोजन मैं ग्रहण करूंगा
पात्र में।
हाँ हाँ जी,
ऐसे बर्तन में, हाँ
मिट्टी के बर्तन में, वो भी हाथ से बने हुए, यानी वो तो कुम्हार होना चाहिए तो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। देखो मतलब ये जो अगर उनके वो संयोग होगा तो होगा इस तरह से। वैसे आपने जो बताया कि शस्त्र वस्त्र आदि जो होते हैं क्या नहीं होते हैं इसका भी उनको ज्ञान होगा,
यानी संयोग कैसा होगा, तो वस्त्र का संयोग नहीं होगा, पात्र का संयोग नहीं होगा, और दोष रहित ही आहार का संयोग होगा, ये उनके लिए अजीव का संयोग है।
अब निचला पैराग्राफ, किसी प्राणी को दुख न हो ऐसी वृत्ति मुनि को उठती है, उन्हें अंतर्भान है, के शरीर की चलने की क्रिया शरीर के कारण होती है, वे समितियों का पालन करते हैं, मुनि के दया के उपकरण रूप मोर पिछी होती है, दंड आदि उपकरण मुनि के नहीं होते, मुनि अविकारी दशा वाले होते हैं। देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं रिपीट करूंगा, किसी प्राणी को दुख न हो ऐसी वृत्ति मुनि को होती है। तो जो मुनि होते हैं वो मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी ऐसा बताएंगे नहीं कि अभी हम यहाँ से, अब मान लो यहाँ सायन में आए हैं तो अभी हम कल उठ के बोरीवली जाएंगे या हम ठाणा जाएंगे या हम पूना जाएंगे, जो भी जाने का उनका, ऐसा बताएंगे नहीं। क्यों कि मान लो कि बोरीवली जाना है और ठाणे वाले को लगता है कि मेरे तरफ आना चाहिए और नहीं जाए तो नाराज, मतलब दुखी हो जाए, इसलिए उनका कुछ भी प्रोग्राम जो कुछ जाने का वो निश्चित पहले होता ही नहीं, और मान लो होता भी हो तो किसी को बताएंगे नहीं। जब भी किसी से बात करेंगे तो हितमित प्रिय वचन ही बोलेंगे। यह जो लिखा ना, किसी प्राणी को दुख न हो ऐसी वृत्ति उनको उठती है, चलते समय भी अपने वो देखो, कभी भी वो अंधेरा होता है जब चलते नहीं, सूर्योदय होवे जिस मार्ग से आगे बढ़ना है वो प्रासुक हो जाए, यानी कैसा कि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए तो निर्जंतुक होता है, उसको प्रासुक कहते हैं। अभी हम तो यहाँ बंबई की बात तो छोड़ो, जब वन में मुनिराज घूमते होंगे तब तो कितने पत्ते फूल क्या क्या नहीं गिरता होगा, लेकिन जब लोगों का टहलना पहलना होता है, क्योंकि पहले तो वो मुनि लोग भी तो क्या पैदल ही चलते थे ना, इस तरह उनके ये बात बताना चाहते हैं कि दुखनो ऐसी वृत्ति, फिर उन आगे के बताते हैं कि समिति का पालन करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब चौथे लाइन से पढ़ रहा हूं मैं, जिसे नव तत्व की वास्तविक प्रतीति सहित उग्र दशा नहीं है वह मुनि नहीं है, यह बात चाहे आज मानो कल मानो यह एक ही बात है। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद लेने को तैयार हुए जीव का बहुत राग घट गया होता है, पूर्ण शक्ति के विकास करने के मार्ग में ऐसा ही निमित्त होता है, तथा मुनि के शौच के लिए कमंडलू होता है, मुनि भोजन के बाद दूसरी बार पानी नहीं पीते, आनंद की दशा वाले मुनि को जंगल में जाना पड़े तो शरीर को साफ करने के लिए पानी लेते हैं परंतु पीने के लिए पानी नहीं रखते। मुनि को किस प्रकार के संयोग रहते हैं और कैसे संयोग छूट जाते हैं जिसको इसका पता नहीं है, अभी जो आपने बताया ना वस्त्र आदि की बात, बर्तन वगैरह, तो कहते हैं मुनि को किस प्रकार के संयोग रहते हैं और कैसे संयोग छूट जाते हैं जिसको इसका पता नहीं है, वह पाप दृष्टि, परिभ्रमण की दृष्टि, पाखंड दृष्टि, असत्य दृष्टि वाला है। जैसा वस्तु यानी आत्मस्वरूप है उसके अवलंबन से प्रकटने वाले मुनि दशा में किस प्रकार के संयोग होते हैं वह बताते हैं, इसे युक्ति से, न्याय से, आगम से, अनुभव से स्वीकार करना चाहिए। जैन दर्शन अर्थात सदोषता को जीतने वाला और निर्दोषता को प्रकट करने वाला है, अंतर स्वभाव में निर्दोषता पड़ी है, ऐसे स्वभाव के आश्रय से निर्दोषता प्रकट करना, क्या कहा, स्वभाव कैसा है त्रिकाली जो अंतरंग में है वो निर्दोष है, और ऐसे स्वभाव का आश्रय लेने से निर्दोषता प्रकट होती है, पर्याय में आपको, और दोष का नाश करना और स्वभाव का ध्रुव रहना, इसमें उत्पाद वे ध्रुव तीनों आ जाते हैं, सदोषता का अभाव हो जाता है, यदि सदोषता का अभाव न हो तो संसार का नाश नहीं हो सकता, और स्वभाव में निर्दोषता न हो तो निर्दोषता प्रकट नहीं हो सकती। बहुत सुंदर, क्या कहते हैं, यदि सदोषता का अभाव न होता हो तो संसार का नाश नहीं हो सकता, और स्वभाव में निर्दोषता न हो तो निर्दोषता प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार निर्दोष स्वभाव के आश्रय से ही निर्दोषता प्रकट होती है और दोष नष्ट होते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग में कैसे निमित्त होते हैं उन्हें नहीं जानने वाले को संयोग का पता नहीं है। ये संयोग यानी अजीव की बात अभी हमने देखी ना, मोक्ष मार्ग का भी पता नहीं। अरे जड़ की अवस्था कौन बदले, डॉक्टर स्वयं मर जाते हैं, अपने को भी बचा नहीं सकते। अतः दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो यानी क्या, तुम्हारी मान्यता बदलो। हाँ जी, हाँ कि मैं पर को या पर मेरे ठीक करेगा सुखी करेगा ये बात छोड़ दो। संयोग पृथक है, विभाव विपरीत है, स्वभाव सामर्थ्यवान है। संयोग की पृथकता, विभाव की विपरीतता और स्वभाव का सामर्थ्य, दयादान आदि भाव विपरीत क्षणिक है। मेरा स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान और आनंद है, ऐसी दृष्टि करके उग्र साधन करके मुनि दशा प्रकट होती है। उसकी यह बात चलती है, वस्त्र पात्र रखकर मुनिपना मानने वालों को तो नव तत्व की भूल है। मुनिपने की प्रतीति में गड़बड़ करने वाला स्वभाव का चोर है। ककड़ी के चोर को फांसी की सजा, भाई ककड़ी का चोर नहीं, यह तो बड़ा चोर है। आत्मा चैतन्य स्वरूप पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव से भरा है, ऐसे भान पूर्वक राग घट जाने पर संयोग घट जाते हैं। फिर भी कोई कहे कि राग घट गया है और संयोग नहीं घटे तो उसे यथार्थ वस्तु स्थिति का भान नहीं है, वह स्वभाव रूपी दरबार को लूटने वाला है। जैसे कोई राजा को भेंट देने के लिए अच्छा तरबूज लाए और कोई उस तरबूज की चोरी करे तो वह सजा को पाता है, उसी प्रकार चैतन्य स्वभाव पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप की प्रतीति करना तथा मुनिपने की प्रतीति करना वह स्वभाव की भेंट है। इनमें गड़बड़ करने वाला स्वभाव का चोर है, भाई वस्तु का ऐसा स्वभाव है। विपरीत श्रद्धा छोड़ो, विपरीत श्रद्धा वालों का राग छोड़ो। यानी क्या कहा, इसको हमने क्या सीखा है, देखो देखो, विपरीत श्रद्धा छोड़ो तो हम समझ गए कि अपनी मान्यता बदलो, विपरीत श्रद्धा वालों का राग छोड़ो। हाँ, उसको अपने में एक, हाँ बहुत अच्छा, षट अनायतन जिसको कहते, छह अनायतन यानी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनके अनुयायियों में राग रखना। मुझे तो बार बार एपी की याद आती है। तथा कैसे हैं मुनि, मुनि के बाह्य वेश की बात करके अब अंतर श्रद्धा की बात करते हैं।
देखो यहाँ बारंबार देव के भी पहले मुनि को लिया है, देव की श्रद्धा तो है ही गर्भित, परंतु जब कुनकुंदा आचार्य हुए थे और श्वेतांबर मत निकला था तो देव के मान तो नाम तो वही थे ना, 24 तीर्थंकर है, अरिहंत सिद्ध है, परंतु मुनि के स्वरूप में अत्यंत गड़बड़ी हो गई थी, तो इसलिए उसको जैन दर्शन कहा। मुनियों के अंतर बाह्य स्वरूप को जैन दर्शन कहा, और जो मुनियों के स्वरूप के बारे में जिसको निर्णय नहीं है उसको मिथ्या दृष्टि कहा। बारंबार यही विषय आ रहे हैं ना अभी, मुनि के स्वरूप की बारंबार बारंबार उसी की चर्चा चल रही है और उसी को यहाँ दर्शन पावर में तो उसी की बात ली है। क्योंकि मंदिर में तो भगवान है विराजमान, तो उसकी तो श्रद्धा करे नहीं करे, परंतु ये जो चलते फिरते जो है मुनिराज और वो जो उनका स्वरूप देखते हैं और उनका उपदेश सुनते हैं, तो ऐसे मिथ्या दृष्टियों को मानने वाले जीव वो भी दर्शन से भ्रष्ट है। मुनि तो भ्रष्ट है ही है, उनको मानने वाले भी दर्शन से भ्रष्ट है, इसलिए जैन दर्शन में मुनिराज को लिया यहाँ पर, ये विशेषता यहाँ पर।
जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि तो किसी व्यक्ति विशेष की तरफ जाती है, अरे ये ऐसा मानता है, अरे वो वैसा मानता है, तो हम तो इतना ही सोचे क्या मैं ये प्रकार की गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा है, अगर करता हो तो उसमें तब्दीली लाना, यानी अपनी मान्यता सुधारना। सामने से चाहे जितने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आए, लेकिन उसमें तुम अपनी बात को भूलना मत। ख्याल में आया ये बात हमें, इसमें ये कुंदकुंदा आचार्य की बात हमें इस तरह से ग्रहण करनी चाहिए। तथा कैसे है मुनि, मुनि की बाह्य वेश की बात करके अब अंतर श्रद्धा की बात करते हैं। अनंत आत्मा, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य है। पंचास्ति का है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश है। तथा सात तत्व जैसे हैं वैसे मानना, सात तत्वों में भूल करने वाले को तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है। नौ पदार्थों को वे जैसे हैं वैसे मानना, मैं पर से और राग से भिन्न हूँ, मैं न्यायिक स्वभावी हूँ, ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव करना वह मूल संग है, वह जैन दर्शन है। ऐसा जैन दर्शन, जिन दर्शन मोक्ष मार्ग का मूल है। बाह्य निर्ग्रंथ दशा और अंतर भेद ज्ञान सहित अंतर अनुभव वह जिन दर्शन है। ये हम ढूंढ रहे थे ना, यहां फिर से दोबारा आया। ऐसे मूल से मोक्ष मार्ग की सब प्रवृत्ति सफल होती है। जिस वृक्ष का मूल अच्छा है उसमें अच्छे फल आते हैं, जिसे मूल संग की श्रद्धा ज्ञान नहीं है उसके सब अफल है। सर्वज्ञ कथित सर्वज्ञ होने के मार्ग को कि जिसकी श्रद्धा है उसकी सर्व प्रवृत्ति सफल है। लोग कहते हैं कि अभी मतों में सभी मतों में मोक्ष होता है, यह बात मिथ्या है। जगत में अनंत आत्माएं हैं, पुद्गलादि अनंत है, स्वभाव के आश्रय से दोष का अभाव होता है, यह बात जैन मत के सिवाय अन्यत्र नहीं है। अभी यहां जो बताए ना, लोग कहते हैं कि सभी मतों से मोक्ष होता है, क्योंकि कोई भी मत ऐसा नहीं कहेगा कि हम आपको मोक्ष नहीं दिलाते फिर भी आप हमारे यहां हो। सभी कहेंगे कि हम मोक्ष दिलाते हैं, लेकिन यहां तो कहते हैं ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। जैन के नाम से स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, श्वेतांबर आदि निकले हैं, वे सब मूल मार्ग से विपरीत है। धर्मी जीव तो स्वभाव के आश्रय से अविकारी दशा कितनी हुई और विकार कितना बाकी है यह जांच करता है। शुद्ध चिदानंद स्वभाव की प्रतीति ज्ञान और रमणता वाले जीव को भान है कि साधक दशा कितनी बड़ी है और बाधक भाव कितना है, यानी साधक दशा कितनी बड़ी है यानी इनहेंस हो रही है, और बाधक भाव यानी राग द्वेष कितना है, ऐसा वह जानता है। इसके सिवाय श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी सब मिथ्या है। अनंत काल से सर्वज्ञ देव ऐसा ही कहते हैं। एक द्राविड़ पंथ है, मुनि होकर खेती करे और प्रवृत्ति करे, वह द्राविड़ पंथ है। ये जानते थे तुम?
लेकिन वह अभी नहीं है,
ऊपर दो तीन बार नाम तो आया लेकिन उनकी मान्यता क्या है ये नहीं मालूम। वह अभी नहीं है, चलो अच्छी बात हो गई, उनकी श्रद्धा भी विपरीत है। यापनीय नग्न दशा में रहते हैं, परंतु स्त्री को मुनिपना मानते हैं और केवली को आहार मानते हैं, अतः मिथ्या दृष्टि है। तथा कोई गाय की पूछ की पिच्छी रखते हैं, तथा कोई मुनि होकर मोर पिच्छी नहीं रखते, वे निरपिच्छ है, इस प्रकार पांचों मार्ग केवली के मार्ग का अपभ्रंश करने वाले हैं। श्वेतांबर श्रृंगार वाली मूर्ति को मानते हैं। स्थानकवासियों ने मूर्ति को उड़ा दिया है। तेरापंथी स्थानकवासी दया दान को पाप मानते हैं। वे सब श्रद्धा से भ्रष्ट है। इन्होंने नए नए सिद्धांत बनाए हैं, 45 सूत्र बनाए हैं, वे सच्चे नहीं हैं। 45 सूत्र यानी आगम ग्रंथ। बाह्य वेश बिगाड़ा है, जिन मतानुसार आचरण नहीं है, ये मूल संग से भ्रष्ट है। इनके मत में परिपूर्ण स्वभाव की प्रतीति ज्ञान और आचरण की प्रतीति नहीं है। कुंद आचार्य आदि मूल संघ की श्रद्धा ज्ञान आचरण से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा नियम जानना। मूल संघ का आदर करने वालों को सम्यक दर्शन होता है, अतः अन्य को सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव कहते हैं। यह विषय विशेष परिचय से समझ में आने योग्य है। यानी कोई नया जिसको द्रव्य गुण पर्याय का ही पता नहीं हो, देवगुरु शास्त्र का स्वरूप का ही कुछ ख्याल नहीं हो, उसको ये बात सुनाएंगे तो और क्या बोलते हैं, भड़क जावे। तो यहाँ कह रहे विशेष परिचय किसका, इस विषय का होगा तो ये बात समझ में आने योग्य है। भगवान कुंद सनातन निर्ग्रंथ पंथ में आचार्य हुए, उन्होंने यह शास्त्र बनाया है। आत्मा पूर्ण शुद्ध पवित्रता की मूर्ति है। दयादान काम क्रोध के भाव होते हैं, वे विकार निर्विकार द्रव्य की विपरीत दशा है। स्वभाव दृष्टि से उन्हें जीतना, अर्थात मैं शुद्ध चिदानंद मूर्ति हूँ, निर्दोषता नित्यानंद मेरा स्वभाव है, उसकी रुचि करके विकार की रुचि छोड़ना सच्ची निर्ग्रंथ दृष्टि है। देखो क्या क्या बात बताए, सच्ची निर्ग्रंथ दृष्टि यानी क्या, मान्यता कैसी है कि स्वभाव की दृष्टि से उन्हें जीतना है, किन्हें, ये जो विकारी दशा है ना, कौन सी, दयादान क्राम क्रोध के भाव वगैरह, उन्हें जीतना अर्थात क्या है कि मैं शुद्ध चिदानंद मूर्ति हूँ और मेरा स्वभाव कैसा है, तो कहते निर्दोषता और नित्य आनंद स्वरूप मैं हूँ, इसकी रुचि करे तो क्या होगा, विकार की रुचि अपने आप छूटती है और इसी को सच्ची निर्ग्रंथ दृष्टि है। वैसी दृष्टि पूर्वक पर्याय में विशेष निर्दोष दशा प्रकट हो वह चारित्र दशा है। ये चारित्र दशा की बात जो बता रहे थे यहाँ उन्होंने उसको पूरा कर दिया। कहते कि ऐसी जो दृष्टि है और पर्याय में निर्दोष दशा प्रकट होती है वही चारित्र दशा है। सम्यक दृष्टि जघन्य साधक है। यदि अंतर में ज्ञान और आनंद न हो तो प्रकट कहाँ से हो, तथा वर्तमान पर्याय में विकार न हो तो आनंद प्रकट होना चाहिए। अतः पर्याय में वर्तमान में विकार है परंतु स्वभाव में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद है, ऐसी दृष्टि करना जघन्य साधक दशा यानी सम्यक दर्शन है। जीव दोष निकालना चाहता है और निर्दोष होना चाहता है, इसका अर्थ यह है कि जो पर्याय बदलती है उसमें दोष है, नहीं तो उसको निकालना क्यों चाहेगा। अतः पर्याय में वर्तमान में विकार है परंतु स्वभाव में पूर्ण ज्ञान और आनंद है, ऐसी दृष्टि करना जघन्य साधक दशा यानी सम्यक दर्शन है। जीव दोष निकालना चाहता है और निर्दोष होना चाहता है, इसका अर्थ यह है कि जो पर्याय बदलती है उसमें दोष है। यदि त्रिकाल वस्तु में दोष हो तब तो दोष का अभाव नहीं हो सकता, पर्याय में दोष का अभाव होता है। पर्याय में दोष न हो तो प्रकट आनंद होना चाहिए और मुझे दोष का अभाव करना है, इस बात का अवकाश भी नहीं रहता। तथा यदि अंतर में निर्दोषता न हो तो निर्दोषता बाहर से नहीं आती। क्या कहते हैं, अंदर में निर्दोषता है और वो नहीं हो तो क्या कहते हैं, निर्दोषता जो पर्याय में आती है वो बाहर से नहीं आएगी। वर्तमान में दोष है उसका नाश करना चाहता है और निर्दोषता लाना चाहता है। वह निर्दोषता अंतर स्वभाव में भरी है, पर्याय में दोष है, उसकी रुचि छोड़कर निर्दोष स्वभाव की रुचि करके सत्य स्वभाव का स्वीकार करने वाला पूर्ण निर्दोषता का जघन्य साधक है। जघन्य साधक यहाँ किसको कहा था, प्रतिपदे, हाँ सम्यक दृष्टि यानी चौथे पांचवे गुण स्थान वर्ती जीव, चौथे के पूर्ण निर्दोष स्वभाव में विशेष लीन होकर विशेष निर्दोषता प्रकट होना पूर्ण निर्दोषता का मध्यम साधक है। और आत्मा पूर्ण निर्दोष ध्रुव स्वभाव है, दोष मेरी वस्तु नहीं है, ऐसी श्रद्धा पूर्वक स्वभाव की शक्ति को व्यक्त करना चाहता है वह अविरत सम्यक दृष्टि है। स्वभाव में विशेष स्थिर होकर अशुद्धता का विशेष अंश नाश करके विशेष शुद्धता प्रकट करना चाहता है वह मध्यम साधक है। आत्मा निर्दोषता का भंडार है, ऐसी प्रतीति पूर्वक जिसने उसमें लीनता की है और जिसका राग बहुत घट गया है वह पूर्ण निर्दोषता का उग्र साधक, वह निर्ग्रंथ मुनि है। उन्होंने मिथ्यात्व के नाश के साथ राग द्वेष का बहुत नाश किया है, वे स्वरूप सन्मुक्तता के उग्र साधक है, यही सत्य पंथ है, यही मोक्ष मार्ग है। चारित्र दशावंत मुनि है, उन मुनिराज को मंद राग आता है तो दया का भाव आता है, उनके वस्त्र पात्र का संयोग नहीं रहता, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहते क्योंकि उनके मंद राग है, उनको मोक्ष के उग्र साधक कहते हैं। मुनियों को जो इस मार्ग से भ्रष्ट हुआ है और तीव्र राग करता है तथा वस्त्र रखकर अपने को उग्र साधक कहता है, हम वीतरागता के साधक है ऐसा कहता है, उसके आत्मा की उल्टी बुद्धि है, मोक्ष मार्ग की उल्टी बुद्धि है। धर्म का आकार आधार लेकर धर्म का उपदेश देते हैं वह सब आचार्य नाम धरा कर अपने को मुनि मनाते हैं, वे निगोद में जाने वाले हैं। जो स्वभाव में पूर्ण लीनता करे वह परमात्मा हो जाता है, स्वरूप लीनता करने वाले ही वीतरागता के उग्र साधक है, यही सत्य पंथ है। इससे भ्रष्ट होकर वस्त्र पात्र रखकर अपने को मुनि मनाते हैं और अरागी दशा के उग्र साधक मनाते हैं, वे यथार्थ दृष्टि और यथार्थ पंथ से भ्रष्ट है। मूल संघ के सम्यक दृष्टि को मोक्ष का मोक्ष तथा मोक्ष मार्ग की प्रतीति है। जो अज्ञानी ऐसे सम्यक दृष्टि से अपनी विनय कराना चाहता है वह दुर्गति पाता है, यह बात अब कहेंगे। आगे कहते हैं, जो यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट है और दर्शन के धारकों से अपनी विनय कराना चाहते हैं वे दुर्गति प्राप्त करते हैं।
यानी जो स्वयं मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि अपना पैर छुए या विनय करे, वंदन करे, हाँ ये से चाहता है, उसकी बात है। यहाँ पर पढ़ेंगे हम गाथा। जे दंसने सुभट्ठा पाए पाड़ंति दंसन दराणम ते होंति लल्लमूला बोहि पुन दुल्लहाते सिं। ये दर्शनेषु भ्रष्टा पादयोः पातयन्ति दर्शनधरान् ते भवन्ति लल्लमूका बोधि पुन दुर्लभातेषाम् चाहे न मन दृगवन्तसे पर स्वयं दर्शन ही न हो है बोधि दुर्लभ उन्हें भी वे
विवचन पगहीन हो।
गाथा सरल है कि जो दर्शन से भ्रष्ट होने पर भी दर्शन धारियों ने सम्यक दृष्टियों से वंदना सत्कार आदि चाहते हैं, वे क्या होते हैं, लल्ल मुगल इन्हें लूले और गूंगे होते हैं। उनके पैर नहीं है ऐसे लूले होते हैं और गूंगे इन्हें वचन नहीं है। इसका अर्थ क्या है, एकेंद्रिय होते हैं, क्योंकि एकेंद्रियों के वचन नहीं होते, द्विंद्रिय से वचन शुरू हो जाता है। और लूले होते हैं क्योंकि उनके कोई अवयव आदि नहीं होते ना, उनके एकेंद्रियों के अंगोपांग कुछ नहीं होते, अंग उपांग कुछ होते नहीं है, इसलिए वो लूले और गूंगे होते ऐसा कहा यहाँ पर। और उनके बोधि पुनः दुर्लभा तेषाम, बोधि की प्राप्ति यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, कौन सा सम्यक ज्ञान, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ हो जाती है। अर्थ जो पुरुष दर्शन में भ्रष्ट है तथा अन्य जो दर्शन के धारक है उन्हें अपने पैरों पड़ाते हैं, नमस्कार आदि कराते हैं, वे प्रभाव में लूले और मूक यानी गूंगे होते हैं और उनके बोधि अर्थात समय दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति दुर्लभ होती है। भावार्थ जो दर्शन भ्रष्ट है वे मिथ्या दृष्टि है और दर्शन के धारक है वे समय दृष्टि है। जो मिथ्या दृष्टि होकर समय दृष्टियों से नमस्कार चाहते हैं वे तीव्र मिथ्यात्व के उदय सहित है। वे प्रभाव में लूले मूक होते हैं अर्थात एकेंद्रिय होते हैं, लिखा नहीं यहाँ पर, उनके पैर नहीं होते, वे परमार्थता लूले मूक हैं यानी निश्चित रूप से इन रियलिटी वस्तुतः। इस प्रकार एकेंद्रिय स्थावर होकर निगोद में वास करते हैं, वहाँ अनंत काल रहते हैं, क्योंकि अनंत काल रहने का ठिकाना निगोद है और निगोद में से अन्य केंद्र में आएंगे, फिर निगोद में जाएंगे, फिर अन्य केंद्र में, ऐसे असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण जो अनंत काल है तो वहाँ वो घूमते रहेंगे। उनके दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति दुर्लभ होती है, मिथ्यात्व का फल निगोद ही कहा है। इस पंचम काल में मिथ्या मत के आचार्य बनकर लोगों से विनयादिक पूजा चाहते हैं, उनके लिए मालूम होता है कि त्रस राशि का काल पूरा हुआ, यानी अभी वो एकेंद्रिय में जाने वाले ऐसा लगता है। जैसी मति वैसे गति और जैसी गति वैसे मति, क्योंकि वहाँ जाने वाले तो वैसी उनकी मति हो रही है, क्योंकि जाना है जहाँ जो जिसका निश्चित ही है, तो आगे का उनका भव वहाँ का निश्चित है, तो अभी वैसे उनकी परिणति भी हो रही है। अब एकेंद्रिय होकर निगोद में वास करेंगे, इस प्रकार जाना जाता है, यानी अभी ऐसे जीवों का द्वेष करने से तो कुछ हो है ही नहीं, वो तो दया के पात्र है, क्योंकि कहाँ की तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ से निकलना अनंत काल में मुश्किल है ऐसे भवों में जाके पटकेंगे वे, और अभी लग रहा है उनको कि नहीं नहीं हम समाज हमको मान दे रही है, हमारा बहुत नाम हो रहा है, हमारे इतनी शिष्य परंपरा है, हमने इतने सारे तीर्थ बनवाए हैं, परंतु उन जीवों की भविष्य की जो हम होनहार ख्याल में आती है ना, अनुमान तो लगा सकते हैं, तो वो तो दया के पात्र हैं, और उनकर उनको देख देख कर अगर हम द्वेषी हुए, हम कषायित हुए, तो उसके हमने क्या पाया उससे, वो कषाय के लायक भी नहीं, उनको देख कर कषाय भी नहीं मत होना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखा ना, ऐसे जीवों को देख देख कर कषाय मत होना। हाँ, ऐसा लगता है ना कि वो तो मार्ग चूक गए हैं और अभी अपना मार्ग स्वयं ही बंद कर रहे हैं,
तो क्योंकि उनको दया के पात्र जो कहते हैं वो भी तो एक कषाय है ना।
हाँ ना, परंतु जो द्वेष रूप जो कषाय है ना,
वो तीव्र कषाय है,
वो तीव्र कषाय है। और ये जो दया होती है, जो सच्ची दया होती है, करुणा जैसे वीतरागी भगवान को भी कहा है करुणा के धारी है, वो वीतरागी करुणा होती है, जो गुरु भी उपदेश देते हैं सच्चे भावलिंगी, तो उनके भी दया है ना परजीवों की, कैसी दया, वो तो कुछ किसी को भोजन खिलाने वाली दया नहीं होती उनके, कोई रोगी है तो उसके कुछ सेवा करने की उनके श्रावकों की या पशु पक्षियों की वो नहीं होती उनके। तो सच्चा उपदेश देकर इस मार्ग में स्थित करने की दया होती है।
अब आगे बढ़ते हैं, देखो गाथा 12 पर के प्रवचन जो है, ये शब्द कुंदकुंदाचार्य देव के हैं, अनादि से मूल संग अथवा सनातन पंथ चला आता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होकर मिथ्या कल्पना से पंथ चलाते हैं वे भ्रष्ट है। वे सम्यक दृष्टि से अपनी विनय कराना चाहते हैं, मैं आचार्य हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, ऐसा नाम धराने वाले मूल मार्ग में रहने वाले सम्यक दृष्टि से वंदन करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। नग्न दिगंबर मुनि होकर उद्दिष्ट आहार लेते हैं, उद्दिष्ट भोजन लेते हैं और धर्म का रक्षक नाम धराते हैं। वे जीव धर्मात्मा सम्यक दृष्टि से वंदन कराना चाहते हैं, उन्हें पैर और जीभ नहीं मिलेगी। एक इंद्रिय हो जाने से ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दुर्लभता हो जाएगी। अनादि से परम सत्य पंथ चला आता था, उसमें से भ्रष्ट होकर वस्त्र पात्र रखकर मुनिपना मनावे अथवा नग्न दिगंबर होकर भी निमित्त से कार्य माने। देखो यहाँ सब बातें आई, निमित्त से कार्य माने, व्यवहार से धर्म माने, वे मूल संग से भ्रष्ट है। अपने स्वभाव के आश्रय से रागी दशा होती है, ऐसी मूल बात है। उसके बदले निमित्त से लाभ मानने वालों को द्रव्य दृष्टि नहीं है। मुनि और क्षुल्लक नाम धराकर पदवी अनुसार बाह्य आचरण का पालन नहीं करते और अपने को धर्म का रखवाला मानते हैं, वे सम्यक दृष्टि को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं, उन्हें सत का तिरस्कार वर्तता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य कम हो इस कारण सम्यक दृष्टि से विनय करवाना चाहते हैं, वे एकेंद्रिय होंगे। मुनि अल्पकाल में पूर्ण परमात्म दशा के साधक हैं, उनके अरागी दशा कितनी है और राग और कितना राग बाकी है, ऐसे मुनिपद का जिसको भान नहीं है उसे परमेष्ठी पद का भान नहीं है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भान नहीं है, उसको नव तत्वों का भान नहीं है। कितनी कितनी बातें बताई देखो, मुनिपने का भान नहीं है, परमेष्ठी पद का भान नहीं है, सम्यक दर्शन चारित्र किसको कहते हैं वो मालूम नहीं है, नव तत्व किसका हो गया ज्ञान नहीं है। जैसे कन्या के पैसे नहीं ले वह संपन्न घर है, गरीब होवे तो मात्र एक नारियल देकर कन्या का विवाह करता है, परंतु यदि पिता कन्या के पैसे लेता है तो वह मांस के पैसे लेता है।
पैसे लेकर लड़की की शादी करते हैं, ये दहेज तो दिया जाता है ना, तो उल्टा अगर कोई पैसे लेकर किसी को कन्या ब्याहता है तो उसका निषेध करते हैं, वो मांस के पैसे लेता है, यानी उसने लड़की को बेच दिया,
यानी दहेज के प्रति निषेध है।
दहेज का उल्टा, दहेज में तो लड़के वालों को देते, लड़की भी देते और पैसे भी देते हैं, और अच्छा, यहाँ लड़की देख के पैसा लेना उसका यहाँ निषेध कर रहे।
वह अपने कुल को कलंक लगाता है। उसी प्रकार आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि हमारे संग में निर्ग्रंथ मुनि दशा है, जो उसमें से निकलकर भ्रष्ट होता है, वस्त्र सहित मुनिपना मनाता है, वह हमारे संग को कलंक लगाता है, तथा नग्न दिगंबर मुनि होकर विकार से लाभ मनाता है, व्यवहार से निश्चय का लाभ मनाता है, वह भी सग्रंथ मार्गी है, मूल संग से च्युत है। निमित्त संयोग के लाभ मनाने वाले को निमित्त का परिग्रह है। पुण्य से आत्मा के सन्मुख हुआ जा सकेगा, ऐसी मान्यता वाले को कषाय मंदता की पकड़ है। यह सग्रंथ मार्ग होने पर भी उसे निर्ग्रंथ मार्ग मनाता है, इसलिए कलंक लगाता है, ऐसा कहा है। जैसे युद्ध के लिए तत्पर राजपूत क्षत्रिय छुपता नहीं है, तथा बादलों की छाया होने पर भी चंद्र छुपता नहीं है, इसी प्रकार वीतराग मार्ग में चढ़ा हुआ निर्ग्रंथ छुपता नहीं है। ऐसा कहकर कुंदकुंदाचार्य ने अपना हृदय उड़ेल दिया है। जिसको निमित्त और राग की पकड़ है वह मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार जो भ्रष्ट होकर सग्रंथ मार्ग को निर्ग्रंथ मार्ग चलाता है,
मार्ग में चलाता है
वह पाप दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। यह बात स्वयं के लिए है, किसी व्यक्ति पर आक्षेप के लिए नहीं है। जैसे विष्ठा को कस्तूरी मानना ज्ञान दोष है, उसी प्रकार सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानने वाले की मान्यता में दोष है। सर्वज्ञ की परंपरा से आया हुआ मार्ग दिगंबर पंथ है, उसे वीतराग पंथ, सर्वज्ञता का उग्र साधक पंथ कहते हैं। जो इससे भ्रष्ट है वे मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग की पकड़ और
मार्ग राग की पकड़।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग राग की पकड़ और संयोग की पकड़ से रहितता का मार्ग है। ये मार्ग कैसा है? राग की पकड़ और संयोग की पकड़, इनसे रहितता उसका मार्ग है। स्वभाव में लीनता का मार्ग है। ऐसे स्वभाव में लीनता करने वाले के वस्त्र छूट जाते हैं, तथापि जो वस्त्रादि परिग्रह रखकर अपने को मुनि माने मनावे वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसी दृष्टि पाप दृष्टि है, सग्रंथ दृष्टि है। राग से और निमित्त से लाभ नहीं मानने वाले तथा स्वभाव से लाभ मानने वाले सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि विनय चाहता है। मैं त्यागी हुआ हूँ ऐसा कहता है। जिसकी राग से लाभ बुद्धि निकल गई है तथा वस्त्र सहित चारित्र मुनिपना मानने की बुद्धि निकल गई है, उस सम्यक दृष्टि से व्यवहार में धर्म मानने वाला, निमित्त से लाभ मानने वाला दोषित यानी उद्दिष्ट आहार लेने पर भी मुनि मानने वाला विनय कराना चाहता है, तो वह लूला और बहरा होगा। अभी ये बहरा यानी अलग बात बताइए, वहां तो गुंगा बात है, ये बहरा नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ, जिसकी मिथ्या बुद्धि निकल गई है उससे मिथ्या बुद्धि वाला विनय चाहता है, वह पैर और भाषा यानी जीव रहित हो जाएगा, यानी वही हो गया ना गूंगा, क्योंकि त्रिकाल स्वरूप से विपरीत मान्यता का फल निगोद है। अभी आगे की बात बाद में लेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालो